मंथन साक्षी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर था। जिस दिन से वो दोनों आयु के रिसेप्शन पार्टी से लौटे थे, तब से साक्षी का मूड उखड़ा हुआ था और वो किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। मंथन आयु और साक्षी के बीच सब सही करना चाहता था, इसलिए उसने साक्षी को काम का बहाना बनाकर वहीं पर रोक लिया। इस वजह से वो मंथन से भी नाराज थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर साक्षी ने मंथन की तरफ देखकर पूछा, पिछले 3 दिनों से तुम्हें घर पर ही देख रही हूँ। तुम्हारे तो सभी क्लाइंट्स, लोकेशन और बाकी चीज़ फाइनल हो गई थी, फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब हुआ? दी, मैंने आपको बताया तो था कि एक NRI बिजनेसमैन मुंबई आ रहा है, बस उसी के साथ मीटिंग के चलते मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पहले तो वो कल आ रहा था, लेकिन अब उसने 2-3 दिन और डिले कर दिया। आपको यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ सही तो चल रहा है? मंथन ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। साक्षी ने कुछ देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो बोली, ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम यहाँ रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ। क्या पता तुम्हारा क्लाइंट डिले करते करते अगले साल तक आए। बोलते हुए उसने मंथन की तरफ देखकर सिर हिलाया। साक्षी का ब्रेकफास्ट हो चुका था, इसलिए वो अंदर अपनी पैकिंग करने चली गई। मंथन साक्षी को अच्छे से जानता था। वो बहुत ज़िद्दी थी और उसने जाने का डिसीजन लिया था तो वो उसकी नहीं सुनने वाली थी। साक्षी के जाते ही मंथन ने सिर पकड़ लिया। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, आई होप वो मेरा मैसेज देखने के बाद जल्द ही रिस्पॉन्स करे। मैं दी को यहाँ ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊँगा। उसके बाद मंथन भी साक्षी के पास चला गया ताकि उसे वहाँ रुकने के लिए कन्विंस कर सके। दूसरी तरफ आरफ खुराला इंडस्ट्रीज़ में था। सुबह आते ही उसकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग से फ्री होने के बाद वो कबीर के साथ अपने केबिन में बैठा था। दोनों के ही चेहरे शांत थे, जैसा अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले शांति छाई हुई रहती है, ठीक उसी तरह। कबीर ने आरफ की तरफ देखकर कहा, बस हमें 12 घंटे और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे मीडिया में एक न्यूज़ फैल जाएगी कि 3 महीने बाद होने वाला इंटरनेशनल अवार्ड शो के लिए सारे अटायर्स खुराना इंडस्ट्रीज़ की तरफ से डिज़ाइन होगी। आरफ ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, मज़ा तो तब आएगा जब वो न्यूज़ छवि सिंघानिया देखेगी। बहुत कोशिश की थी उसने वो डील पाने के लिए। मेरी नेगेटिव इमेज बनाने के लिए उसने उस लड़की से मेरा और आयु का वीडियो तक वायरल करवा दिया था। जैसा कि हर बार वो चीप हरकतें करती रहती है, उसने इस बार भी ऐसा ही किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बेचारी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, फीलिंग पिटी फॉर हर। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल ऑन किया। आरफ जब भी मीटिंग में होता था तब अपना मोबाइल बंद ही रखता था। मोबाइल ऑन करते ही आरफ के मोबाइल पर एक एक करके काफ़ी सारे मैसेज आए और उन्हें पढ़ते हुए आरफ के फेस पर ईविल स्माइल थी। अच्छा, तो उसे मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। खैर, ये तो होना ही था, मेरे अलावा उसे और संभाल भी कौन सकता है, आरफ मैसेज पढ़ते हुए बोला। मंथन ने उसे ही मैसेज करके घर पर आने के लिए कहा था। आरफ साक्षी का इकलौता फ्रेंड था, इस वजह से दोनों कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे की ही सुनते थे। आरफ के एक्सप्रेशंस देखकर कबीर ने पूछा, आप किसको संभालने की बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में कुछ हुआ है क्या? मैं आयु की नहीं, साक्षी की बात कर रहा हूँ कबीर। हाँ, हॉस्पिटल में सब ठीक है, और वैसे भी अयान के होते हुए मुझे आयु की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आरफ ने जवाब दिया। फिर उसने मंथन को रिप्लाई करने से पहले कबीर से पूछा, मुझे साक्षी से मिलना है, कोई मीटिंग लाइनअप है तो अभी बता दो। हाँ, एक मीटिंग है, आप शाम के 4-5 बजे के करीब फ्री हो जाओगे, वहाँ आपका होना भी ज़रूरी है, कबीर ने आरफ का शेड्यूल बताया। ठीक है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि फाइल्स लेकर ऊपर आ जाए, आरफ ने जवाब दिया। जब से उसे पता चला था कि युवानी और कबीर डेट कर रहे हैं, तब से वो युवानी को कबीर की गर्लफ्रेंड कहकर ही बुलाता था। युवानी को बुलाने का नाम सुनकर कबीर का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, आप खुद ही कॉल करके बुला लीजिए, और जब तक आप दोनों बात कर रहे हो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे दोनों ब्रेकअप करने वाले हो या दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, आरफ ने सिर हिलाकर पूछा। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जवाब में कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, हम दोनों की बहस हुई है, वो चाहती है कि मैं उसकी फैमिली से मिलूं, अगर मैं उसकी फैमिली से मिला तो फिर उसकी फैमिली मेरी फैमिली से मिलने की बात रखेगी और यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगी। युवानी ये भी चाहती है कि मैं अपने बारे में उसके मॉम डैड को कुछ ना बताऊं, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती है, पहले मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा, और फैमिली से क्यों नहीं मिला सकते? दादी से बात करो, मैं और दादी चलते हैं युवानी के घर पर, तुम्हारी एक पहचान है कबीर, भले ही तुम माहिरा के लिए काम करते थे लेकिन आज का सच ये है कि तुम खुराना इंडस्ट्रीज़ की मैनेजर हो, आरफ ने काफ़ी सीरियस होकर जवाब दिया। वो कबीर को अपनी फैमिली ही समझता था और कबीर रहता भी उन्हीं के घर पर था। कबीर दिल ही दिल में उन्हें अपना परिवार ज़रूर मानता था, लेकिन वो ये बात कहने से हिचकिचा रहा था। आरफ ने खुद से पहल की तो वो थोड़ा इमोशनल होने लगा। कबीर कुछ कहता उससे पहले आरफ ने इंटरकॉम उठाया और कॉल कनेक्ट करने से पहले बोला, मुझे नहीं लगता तुम ठीक से युवानी को अपनी बात समझा भी पाओगे, मैं उससे बात करता हूँ और सब फाइनल कर लेता हूँ। कबीर आरफ को रोकने के लिए कुछ कहता उससे पहले आरफ ने युवानी को ऊपर बुला लिया था। पिछले कुछ दिनों से कबीर और युवानी के रिलेशन में टेंशन चल रही थी और उसी के चलते दोनों की ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। आरव और आयु की वजह से कबीर भी एक्स्ट्रा बिजी था और उसने भी खुद से बात करने की कोशिश नहीं की। युवानी फाइल्स के साथ में ऊपर केबिन में पहुंची। कबीर को देखते ही युवानी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके ऐसा करने पर आरव के चेहरे पर स्माइल थी। युवानी चुपचाप कबीर के पास वाली चेयर पर बैठी थी जबकि आरव फाइल पढ़ते हुए बोला, तुम दोनों को कुछ सीखना चाहिए मिसेस खुराना से। हम दोनों की बहुत बुरी वाली बहस होती है लेकिन फिर भी वो कभी मैदान छोड़कर नहीं भागती, उल्टा लड़ने के लिए तैयार रहती है। कबीर और युवानी दोनों हैरानी से आरव की तरफ देखने लगे। ये पहली बार था जब युवानी के सामने आरव ने अपनी कोई पर्सनल बात बताई थी, जबकि कबीर से तो वो अपनी हर एक बात शेयर करता ही था। तो क्या आपको मैम पर गुस्सा नहीं आता सर? युवानी ने मासूमियत से पूछा। वो मुझसे ज्यादा गुस्सा करती है तो मेरी बारी ही कहाँ आती है। हाँ, मुझे उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं अपनी पर्सनल बातें तुम दोनों को क्यों बता रहा हूँ? तुम दोनों की लड़ाई बहस तुम दोनों आपस में अच्छे से निपटा सकते हो, आरव ने सिर हिलाकर कहा और फिर युवानी की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोला, चलो तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। मैं और दादी कबीर के साथ किसी फिक्स डेट पर डिनर के लिए आएंगे और शादी की बात कर लेंगे। तुम दोनों चाहो तो खुराना मेंशन में रह सकते हो, बट आई वांट कि तुम दोनों को भी प्राइवेसी मिले। कबीर ने अपने लिए अलग से घर खरीद रखा है तो तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। वीकेंड पर हमसे मिलने आ जाना।
आरव की बातों से युवानी खुश हो गई थी तो वही कबीर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि आरव ने उसके लिए इतना कुछ प्लान कर रखा है। हालांकि उसे माहिरा और आरव की तरफ से काफी सैलरी मिलती थी और उसका कोई अपना नहीं होने की वजह से उसने बहुत सेविंग कर रखी थी। उसके बावजूद आरव ने कबीर के लिए घर भी ले रखा था, इस बात को वो नहीं जानता था। सब कुछ समझते ही कबीर के फेस पर हल्की स्माइल थी। वो आरव को थैंक यू कहना चाहता था लेकिन आरव उससे पहले बोल पड़ा, चलो अब तुम दोनों जाकर बात करो और अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। कबीर, हो सके तो मीटिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर दो ताकि मैं पहले जाकर साक्षी से मिलता हूँ। मंथन बोल रहा था कि वो जाने की जिद कर रही है। अगर साक्षी आयु से नाराज होकर चली गई तो इस बात का ब्लेम भी वो मुझ पर ही डालेगी। ठीक है सर, मैं देख लूंगा, आप जा सकते हो, कबीर ने जवाब दिया। आरव ने फिर एक मिनट की भी देरी नहीं की और तुरंत वहां से साक्षी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। वहीं उसके जाने के बाद भी युवानी और कबीर वहीं पर बैठे थे। आरव के जाते ही कबीर युवानी के सामने अपने दोनों कान पकड़कर बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें टाइम भी देना चाहिए था। उसके कान पकड़ने पर पहले युवानी मान जाती थी लेकिन अब उसने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली मिस्टर कबीर, अभी अभी सर ने क्या कहा कि उनकी मिसेस खुराना उन्हें बहुत परेशान करती हैं, तो मैं भी हमारी लेडी बॉस से इंस्पायर होकर तुमसे लड़ाई करूंगी। जब तक मुझे तुम ठीक तरीके से मना नहीं लेते मैं नहीं मानने वाली। युवानी ने अपने बाल झटके और वहां से उठकर चली गई। वहीं उसके जाते ही कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। हर बार की तरह आरव ने कुछ अच्छा तो किया था लेकिन साथ ही सामने वाले का काम काफी हद तक बिगाड़ भी दिया था। आरव सर तो इतनी जल्दी अपनी पर्सनल बातें किसी को नहीं बताते, फिर आज, कबीर हैरानी से सोच रहा था। तभी उसे सब समझ आया तो उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, क्यों सर, आपने मेरे साथ ऐसा जानबूझकर क्यों किया? आप युवानी के बिहेवियर को अच्छे से समझते हो, वो आपकी बात बिना सवाल जवाब किए आंख बंद कर मानती है और आपने उसका फायदा उठाया, दिस इज नॉट फेयर। आरव ने जो रायता फैलाया था उसे समेटने के लिए कबीर युवानी के पास जा रहा था तो वहीं आरव गाड़ी में था और साक्षी के घर जा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने खुद से कहा, कम ऑन कबीर, सीधा साधा रिलेशनशिप काफी बोरिंग होता है, मैं क्यों अपनी वाइफ को मनाता फिरूं? तुम मेरे फ्रेंड हो, हर काम में मेरे साथ रहते हो तो इसमें भी तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जाओ, जाकर मनाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। आई होप कि युवानी मेरी बात अच्छे से समझ गई हो और जल्दी से तुम्हें माफ ना करे। बाकी अगर मामला बिगड़ भी गया तो संभालने के लिए तो मैं हूं ही। ये आरव है ना, इसे सच में दूसरों की लाइफ में रायते फैलाने में बहुत मजा आता है।